अगर मैं अभी कहूं कि साहब रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, अभी आप में से हर आदमी बड़े पुरशोर तरीके से कहेगा कि बेशक बेशक, लेकिन उतना ही खौफजदा है हम अपने बॉस से कि नौकरी से न निकाल दें, उसके हर गलत और सही ऑर्डर को मानने को तैयार हैं हम। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इज्जत देने वाला तो रब है, इज्जत और जिल्लत उसी के इख्तियार में है, आप बड़े पुरशोर तरीके से मेरी ताईद करेंगे कि जी बेशक, लेकिन हम खौफजदा हो जाते हैं दूसरे की इस धमकी से कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा वरना ये काम करो। इसी तरह जान तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत का एक हिसाब तो उसी के पास है, और मौत का एक दिन मुअय्यन है। देखिए अभी आप सब लोग बड़ी पुरजोर ताईद करेंगे मेरी, लेकिन उतना ही हम खौफजदा होते हैं कोई भी गोली मारने की धमकी दे के हमसे कुछ काम करा ले। तो अजीब चीज यह है कि वो चीजें जिसके बारे में हम इतने पुरीमान हैं, ऐसा यकीन जाहिर करते हैं, और उसी खौफ से हम गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। जो चीजें रब ने अपने जिम्मे ले ली हैं, उसका वादा कर लिया है, वही उससे मांगते फिरते हैं। वो तो कह चुका कि मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हें रिस्क दूंगा, तो उसको मैं हर दो मिनट के बाद बताने जाता हूं या अल्लाह मेरे कनस्तर में आटा खत्म हो गया, आटा दे दे। तो जो चीज उसने अपने जिम्मे खुद लाजिम कर ली और उसकी जिम्मेदारी उसने कबूल की और कह दिया कि मेरी ये जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर उन चीजों का उससे क्या मांगना। और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि इसकी ये हकीर तरीन चीज है मेरी नजर में। मैंने पिछली किसी महफिल में जिक्र किया था दुनिया की वैल्यू का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के नजदीक तो दुनिया की हैसियत उतनी है जितनी एक गली सड़ी बकरी के एक बाल की, तो हम उससे इतनी हकीर चीज मांगते रहते हैं। लेकिन वो चीज जो उसने जिसका वादा नहीं किया, अपने जिम्मेदारी नहीं बनाई, वो हम उससे क्यों ना मांगे कि उससे उसका रहम मांगा जाए, उससे उसका फजल और करम मांगा जाए, उससे उसकी रहमत उससे मांगी जाए। और फिर सबसे बढ़कर यह है कि जब रब हमारा सबसे ऊंची शान वाला है, सबसे बड़ा है, तो उससे कोई ऐसी चीज मांगी जाए जो उसके शाया निशान हो। हकीर चीजें उससे क्या मांगे बंदा, उसके शाया निशान तो उसकी सिर्फ अपनी जात है, तो फिर उससे उसकी जात क्यों ना मांग ली जाए कि अल्लाह तू अपना आप अता फरमा। दुआ में मांगने की तो और बहुत सी चीजें हैं जो रब ताला से मांगी जा सकती हैं। हम उससे हमें जरूर कहना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुनिया और आखिर दोनों बेहतरीन कर दे, लेकिन उसके साथ साथ हम उससे रहमत भी उसकी मांग सकते हैं, उससे उसका फजल मांग सकते हैं, उससे उसका रहम मांग सकते हैं, से बख्शिश मांग सकते हैं, और सबसे बढ़कर यह है कि खुद उसकी जात हम मांग सकते हैं उससे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जब हम उससे उसकी जात मांगते हैं तो वो अपना आप हमें जस्ट लाइक दैट नहीं अता कर देगा। वो खुद कुरान में भी कहता है कि जो लोग दावा करते हैं कि वो मेरे ऊपर ईमान ले आए तो मैं उसे फिर आजमाता हूं, तो जब वो अपना आप आपको अता करने लगेगा, आपको अपना दोस्त बनाने लगेगा, तो उससे पहले वो ये भी देखना चाहेगा कि हम अपने इस दावे में कितने सच्चे हैं, हम तैयार भी हैं कि नहीं हैं कि उसकी दोस्ती को ले सकें, हमारी उस तैयारी को भी टेस्ट करेगा। तो वहां पे फिर बाज़ुकात खासे सख्त मकामात आने लगते, माली लिहाज से नाकाबले बयान हद तक की तंगी आ जाए, फाके शुरू हो जाए, घर का सुकून जाता रहे और अज़्वाजी जिंदगी सब तक की तल्ख हो जाए कि इंसान शायद अलहदगी की सोच बैठे, फिर इंसान पर बेपनाह किस्म की और बड़ी शदीद तोहमतें और इल्जामात लगने लगें, जो बजाते खुद बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा टेस्ट। यहां बड़े बड़े दिल गुर्दे के लोग हिल जाते हैं, फिर लालच और तरगीबात और तहजीसात ये सब आने लगे। तो उस मकाम से फिर अल्लाह से मदद मांगी जाए कि या अल्लाह ऐसे सख्त मकामात से तू अपने फजल से गुजार दे हमें, तो वो मकाम आएंगे तो उससे उसकी जात मांगने से पहले ये सोच लीजिएगा। इसी तरह एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, तो फरमाया एक बार फिर कहो। सहाबी ने दोबारा अर्ज की, फरमाया एक बार फिर कहो। तो जब साहबी ने तीसरी बार भी अर्ज कर दी तो फरमाया कि फिर अब फक्र फाका के लिए तैयार हो जाओ कि ये दौड़ दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। मैंने तो अर्ज किया कि कुरान में उसने कहा कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि वो मुझ पर ईमान लाए, मैं उन्हें आजमाऊंगा। नहीं, उसमें नहीं, शर्त नहीं रखते लेकिन आजमाइश होती है। नहीं, मैंने तो मेरी नजर से तो ऐसा अभी तक गुजरा नहीं। जो बच निकला हो उसमें भी जिल्लत बहुत होती है, रुसवाई होती है, सख्त मकामात बहुत आते हैं। आप ये बताइए कि अगर आप अपना तमाम जेवर किसी मुलाजिम के सुपुर्द करने लगें तो क्या मुलाजिम जो पहले दिन आपके घर में आया है, पहला ही घंटा है आपके घर में, आप अपना जेवर और अपना कैश उसके हवाले कर देंगी या पहले उसे आजमाएंगी देखूं तो ये कितना ईमानदार है? नहीं, ऐसा नहीं। वो इसी मिसाल से बात समझ में आएगी, हालांकि इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं इस मिसाल का, लेकिन समझ आ जाएगी कि रब ताला अगर आप किसी भी इंसान को दोस्ती अपनी अता करेगा तो वो भी उसे परखना चाहेगा कि ये इस काबिल हुआ कि नहीं हुआ कि मेरी दोस्ती का बार संभाल सके। अगर हम इंसान हैं और किसी शख्स के साथ दोस्ती करने से पहले उसे 100 तरह से परखते हैं तो रब ताला भी इतनी बड़ी अता करने से पहले जरूर चाहेगा कि वो टेस्ट कर ले कि इस काबिल है भी कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि चूंकि अल्लाह किसी शख्स को दोस्त बना रहा है अपना, तो फिर उससे उन तमाम चीजों को दूर कर देगा जिनको वो हकीर समझता। तो ये दुनियावी माल ज़र और दुनियावी आराम व आसाइश तो उसकी नजर में बहुत हकीर है, तो वह अपने दोस्त को हकीर चीजों में कहां मुब्तला देख सकेगा। नहीं, इल्मे गैब की मैंने बात नहीं की थी, मैंने कशफ व करामात की बात की थी कि अगर कशफ व करामात को आप कसौटी बनाएंगे किसी शख्स के वली होने की, वो कुरान में भी मौजूद है कि ये इल्म अहले किताब में से भी कुछ लोगों के पास है, ये कुरान में भी मौजूद है ये बात। देखिए ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसीलिए रब ताला ने इसे बयान किया दोनों को अलहदा अलहदा से, क्योंकि है ही बुनियादी तौर पर ये दो चीजें। एक तो जहां तक इल्म गैब की बात है, इल्म गैब में एक बड़ी क्लियर कट चीज रब ने बयान की हुई है कि आलमुल गैब में हूं, उसने क्लियरली कहा। हां, ये भी साथ आगे उसी आयत का हिस्सा, हां मैं जिसको जितना चाहता हूं अता कर देता हूं। तो ये कहना, सिर्फ इतना हिस्सा बयान करना कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, किसी और को नहीं मिला, दुरुस्त नहीं होगा। ये हमें फिर पूरा कहना पड़ेगा कि आलम गैब सिर्फ अल्लाह ही है, हां जिसे वो जितना चाहता है अता फरमा देता है। एक तो रब ने शुरू में ये कह दिया, उसके बाद आगे जाके ये कह दिया कसम खाकर कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह का इल्म अता फरमाया। अब ये उसके कादर मुतलिक होने की दलील है कि वो हर चीज का मालिक है, अपनी किसी चीज में से कितना ही किसी को अता कर दे वो मालिक है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो वो उसने जितना जितना चाहा वो अता फरमा दिया, अपने अंबिया कराम को भी, औलिया कराम को भी और आम बंदों को भी। अब इसमें क्यों और कैसे, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो नहीं सकते क्योंकि वो मालिक है। और जहां उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर ये फरमाया कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, ये भी उसके कादिर होने की दलील है कि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो जो उसने कहा कि कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता अगर मैं ना चाहूं, और कोई किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर मैं ना पहुंचाना चाहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मर्तबे और अपनी तमाम तर हैसियत कि वो रब के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं, बहरहाल बंदा थे अल्लाह के, तो अल्लाह के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजबूर महज हैं। बेशक अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हैं, लेकिन रब के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा है। तो अगर रब न चाहे तो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कुछ कर सकते। जनाब 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 जनाब, बड़ा आसान सा काम है। कई हफ्ते पहले यहां इस मौजू पे बात हुई थी और मैंने उस वक्त अपनी समझ के मुताबिक एक हल पेश किया था उसका। हम में से हर आदमी क्लास 5 तक दीनियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुताल्लिक तमाम चीजें पढ़ चुका होता, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजजा है कि हम लोग जो क्लास 5 तक और चीजें भी पढ़ते हैं, जवानी तक पहुंचते पहुंचते उन सबको भुला चुके होते हैं, लेकिन दीनियात का यह हिस्सा हमारे जहन से कभी महव नहीं होता। वो हमें इसी तरह याद होता है जिस तरह अभी कल की बात है। अगर हम में से हर आदमी, चाहे वो नौजवान है या कोई और है, बगैर इन चीजों में गए कि शलवार कितनी ऊंची टखनों से जानी चाहिए और कफ हमारे शर्ट के आस्तीन के कहां होने चाहिए, टोपी कितनी नीची हो, कितनी ऊंची हो, कितनी फैली हो, अगर हम सिर्फ ये कर लें कि जिंदगी के अंदर कोई भी फेल अंजाम देने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले अगर जरा सा हम रिकॉल कर लें कि हमने दुनियात की किताब में क्या पढ़ा था कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फेल, क्या आपने अमल फरमाया, उसको हम सिर्फ नकल कर लें तो दीन इस्लाम पर अमल मुकम्मल हो जाएगा हमारा। जैसे अगर एक आदमी चलते हुए मेरे ऊपर कोई गंदगी फेंक देता है, थूक रहा है, मेरे ऊपर गिर गया, तो उसको गाली देने से पहले, थप्पड़ मारने से पहले अगर मैं ये सोच लूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओझड़ी फेंकने वाली के साथ क्या सलूक किया था, तो मैं उसकी नकल कर लेता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई कर्ज मांगने आ गया था तो ऐसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फेल, किसी को कर्ज दिया उसने वादे पर वापस नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कैसे रिएक्ट किया, किसी शख्स ने सख्त कलामी की है सामने से तो ऐसे वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल किया, सो ऑन सो फोर्थ। ये सारी चीजें दीनियात में हम क्लास 5 तक पढ़ चुके हुए होते हैं। अगर हम उसे ही कॉपी करते चले जाएं, अब जहां तक नमाज का मसला है, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू बना हुआ है सबके लिए, बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ तरीकों से नमाज अदा फरमाई है, रफाए यदैन भी किया है, हाथ ऊंचे भी बांधे हैं, यहां भी बांधे हैं, हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ी है, हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी है। तो हम किसी भी तरीके से नमाज पढ़ लें अदा हो जाएगी। हां, अलबत्ता जो जो समझ आने लगे तो फिर हम देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आखिरी आयाम में किस तरह से अदा फरमाई, जो आखिरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल 2 साल थे उसमें किस तरह नमाज अदा फरमाई, तो फिर उसकी तकलीफ शुरू कर दें हम। और जब तक उस मयार तक नहीं पहुंचते तो किसी तरीके से नमाज पढ़ते जाएं रफाई अदायन कर लें, हाथ छोड़ दें, हाथ बांध लें, नमाज हो जाएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई है। सिर्फ इस पर वो बुनियादी चीजें कि रुख खाने काबा की तरफ होना चाहिए, नियत कैसी बांधी जाए उस पर कोई इख्तलाफ है नहीं, तो नमाज अदा होगी। यही मैंने अर्ज किया कि आप यहां से शुरू हो जाइए और जब आप उस मकाम पर आ जाएं कि इतनी समझ आ जाए तो फिर आप इन बारीकियों पे चले जाइए। वो तो मैंने तो खुद ही अर्ज कर दिया आपसे। और जहां तक इस्लाम की बात है, देखिए इस्लाम इसलिए कहते हैं कि बड़ा सिंपल है कि जितना कुछ हमने दीनियात में पढ़ाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में, अगर उसको कॉपी करते चले जाएं तो उसमें कहीं दुश्वारी है नहीं। दुश्वारी उस वक्त आएगी जब मुख्तलिफ मसलक जो हैं आप उनको एग्जामिन करना शुरू कर दें, फिर वो दुश्वारी आती। तो अगर सिर्फ एक ही मसलक रखा कि मुझे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नकल करनी है तो काम बड़ी आसानी से अदा होने लगते हैं सबके साथ। सुलेमान नदवी साहब देखिए एक बड़ी सिंपल बात है कि यहां पर अगर मैं ये कहता हूं कि साहब जुबैर साहब के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं, डॉक्टर साहब के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं, कर्नल साहब के पीछे नमाज नहीं जायज, सवाल ये है कि अब जुबैर साहब अहले हदीस हैं, ये वहाबी हैं, कर्नल साहब अहले तशी हैं, तो जब मैं उमरे पर जाता हूं तो खाना काबा में मैं जमात नमाज पढ़ता हूं। अब उनके जो इमाम खाना काबा के जो इमाम हैं उनका मसलक जो भी रहा हो, कभी आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि वो किस मसलक के, उनके पीछे मैं बड़े सुकून से नमाज पढ़ता हूं। इसी तरह जब मैं मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाता हूं तो वहां भी कभी मैंने नहीं सोचा। तो ये सोचें सिर्फ यहां क्यों आती हैं, वहां क्यों नहीं आती जाके। तो अगर नमाज मेरी वहां किसी और गैर मसलक के पीछे जायज है तो यहां क्यों नहीं जायज? रब तो यहां भी वही है, नमाज यहां भी वही है। तो किस्सा यह है कि हम बिला वजह में इन किस्सों में पड़े हुए हैं। ये ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल ना देखा जाए, कतन सिर्फ ये देख लिया जाए कि गैर मुस्लिम के पीछे नमाज ना पढ़ लें, वो गलत हो जाएगा। अब उस सिलसिले में भी ये है कि एक साहब थे, अब तो इंतकाल कर गए इसलिए उनको बयान कर देना कोई बुरी बात नहीं होगी, पाकिस्तान के पोस्ट मास्टर जनरल, उनको मैं अपने साथ जुमे की नमाज पे ले जाया करता था जबरदस्ती। और वो जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते थे वो उन्हीं इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे। तो एक बार किसी तरह उन इमाम साहब को ये पता चल गया कि यहां पोस्ट मास्टर जनरल साहब आते हैं और वो मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, और मैं वहीं मौजूद था जब उन इमाम साहब को परेशानी शुरू हुई कि कहीं मेरा दीन ही तो नहीं खत्म हो गया। तो उन्होंने फौरन मौलाना फजल रहीम साहब से मेरे सामने ही पूछा कि जनाब ये शाह साहब के साथ एक गैर मुस्लिम आते हैं और जुमे की नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही ईमान जाता रहा हो? तो अब मैं तो कोई साहिब इल्म हूं नहीं, तो मुझे हैरत ये हुई कि इन्होंने ये सवाल क्यों पूछ लिया। ये तो बड़ा सिंपल सीधा सा मसला है कि वो मर्दई होने के बावजूद नीयत ये कर रहे हैं कि नमाज अल्लाह ताला वास्ते अल्लाह ताला के मुंह काबे शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, तो उनकी नियत वो है जो इस इमाम की नियत है, ना कि इमाम की नियत उस मुक्तदी के पीछे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि वो आखिरी अयाम में मुसलमान हो गए, वो पोस्ट मास्टर जनरल साहब, और उन्होंने फिर मुझे अपने हाथ से दुरूद शरीफ लिख के दिया जो आज भी मेरे पास महफूज है। बड़ा था दुरूद शरीफ, कैलीग्राफी उनका शौक था, उन्होंने लिखा तो इंतकाल से पहले मुसलमान हो गए थे। इसी तरह लंदन में दो सिख आए हुए थे, जुमा था उस दिन, तो मैंने उनसे कहा कि आप तशरीफ रखिए, खाना खाइए, यहाँ जर्मनी से आए थे वो, तो मैं जरा नमाज पढ़ के आया, फिर आके मैं आपसे गपशप मारता हूँ। तो एक और साहब से कहा कि आप नहीं जा रहे जुमे पे, तो इनके साथ खाना खाइए बैठ के। तो कहने लगे जी आप किधर जाएंगे? मैंने कहा मैं तो मस्जिद में जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, जिस रब की पूजा आप करेंगे हम भी उसकी पूजा कर लेंगे, आ जाइए। तो लोगों ने मुझे समझाया कि पागल हुए हो, सिख हैं ये, जब बाजमात नमाज पढ़ेंगे तो लोग तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, इनको भी कत्ल कर देंगे, मस्जिद में कैसे घुसा है। मैंने कहा भाई वो मेरे रब की इबादत करना चाहते हैं, मेरे तरीके से करना चाहते हैं, मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला? तो मैं तो लेके जाऊंगा, कोई मारना चाहता है मुझे मार दे, कोई बात नहीं। तो मैं बड़े मजे से उनको ले गया, उनको खड़ा किया अपने साथ। मैंने कहने लगे ये बताएं कि पढ़ना क्या है? तो मैंने कहा एक आसान सा लफ्ज बताता हूं, वो पढ़ लोगे? कि जी जी। तो मैंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते रहो, न पढ़ो तो जो स्पीकर से आवाज आए उसको गौर से सुनते रहना, तो जैसे हम करें वैसे कर लेना। मैंने कहा ये आसान ही कर लेंगे। बाजमात उन्होंने जुमा अदा किया वो अपनी पगड़ियों के साथ, उसी तरह बड़े मजे से वो मेरे साथ चले आए। लोग गुस्से से देख जरूर रहे थे लेकिन बोला नहीं कोई। सवाल ये है कि भाई वो तो उस इमाम के पीछे नियत बांध रहा है, इमाम उसके पीछे थोड़ी नियत बांधना है, तो दीन उनका खराब होगा हमारा थोड़ी होगा। तो इसलिए इसकी फिक्र की जरूरत ही नहीं है कि कौन क्या है, सिर्फ ये देख लीजिए गैर मुस्लिम के पीछे नमाज ना पढ़े आप, बाकी खैर है, अल्लाह कबूल फरमाने वाला है, वो तो नियतों को और दिलों को देखता है। काफी है कि अगर कोई शख्स कि हम इस बात से रुक जाएं, कोई शख्स ये दावा करे, ये कहे कि मैं मुसलमान हूं, तो हम उसे गैर मुस्लिम करार दे दें। लेकिन जहां तक ये मर्दई हजरात की बात है, क्योंकि इनके बारे में मुल्क की आला तरीन अदालत ने फैसला दिया और शरीयत काउंसिल को कंसल्ट करके दिया है, फिर दूसरे जय्यद उलमा को कंसल्ट करके दिया है, तो हम उन्हें मुसलमान अब नहीं गर्दान सकते। वो शरीयत का हिस्सा है जिसको हम इज्तिहाद या अजमा कहते हैं, तो उस पर चूंकि इत्तफाक है तमाम उलेमा का, तो इस लिहाज से वो फैसला उसको करें। नहीं ऐसा है कि वो, मैं इसलिए नेशनल असेंबली को वाली चीज को ओमिट कर गया, उन्होंने भी रेफरेंस दिया था नेशनल असेंबली का, लेकिन मैं उसे इसलिए ओमिट कर रहा था दरमियान में से कि जो शर्त है इस्लाम की वो है इज्तिहाद और अजमा की, और वो अजमा या इज्तिहाद जय्यद उलमा के जरिए पूरी होती है, नेशनल असेंबली से नहीं होती, क्योंकि नेशनल असेंबली के मेंबर उलमा नहीं है। नहीं वो है, देखिए इस तरह से है कि हम तो अपना नहीं लेंगे, हम तो अहकाम इलाही या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेंगे, हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी के सामने वैल्यू नहीं रखेगी। अब ये क्लियर कट फैसला है कि शरीयत के अंदर जिन चीज़ों का हमें हल या हुक्म कुरान से नहीं मिलता, उसको दर्जा बदर्जा हम नीचे लाते जाएं, और फिर अगर कहीं हमें मयसर ना आए तो इज्तिहाद कर लिया जाए या अजमा कर लिया जाए, दोनों में से जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें आप। तो वो अजमा की शर्त ये है कि ऐसे उलेमा जिनकी इल्मियत पर इख्तलाफ ना हो लोगों को, जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स ना हो, उन लोगों की राय के मुताबिक फिर फैसला कर लिया जाए। तो इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया था तो उस सिलसिले में उन्होंने तमाम जगहों से कंसल्ट करने के बाद, राय लेने के बाद फिर इस पर अपना फैसला दिया था, यूं मैं उसको रेफर कर रहा था। नेशनल असेंबली सही है कि हमारे यहाँ वो जो मुल्की और कौमी मसाइल हैं उन पर उनका फैसला आखिरी है। लेकिन ये मसला जरा सा हमारे मुल्की और कौमी मसाइल से हटके है, ये पूरी उम्मा का मसला है, तो इस पर उलमा और सुप्रीम कोर्ट ही के फैसले को मैं रेफर करूंगा। मिर्जा साहब बेचारे, उनका किस्सा अजीबोगरीब हुआ। ये इल्मियत के लिहाज से बहुत बुलंद थे, उन्होंने ये झूठा दावा करने से पहले तक जितनी किताबें लिखी कमाल की हैं, तो शायद इल्म की ज्यादती और रहनुमाई न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दिमाग उलटता गया और शैतान के कब्जे में जाते गए, हत्ता के मुर्तद हो गए। उसके बाद उनकी गिरफ्त अपनी तहरीरों में नजर आता है कि उनकी गिरफ्त खत्म हो गई है, क्योंकि जो इनके मिर्जा साहब के जमाने के इनके साथी हैं उनको वो साहबा कहते हैं। ऐसा है कि देखिए इसके अंदर दो चीजें, एक तो वो जो आपने कहा कि साहब इंसान को अपने तौर पे सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं, बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले ही कहा कि जब तक नहीं समझ आए उस वक्त तक इस तरह कर लिया जाए, और जब इंसान समझने लगे तो फिर उसकी तमाम दूसरी तफसीलात को भी देख ले और उसके मुताबिक चल पड़े। वो मैंने पहले कही थी बात आपसे। अब सवाल ये है कि जो आपने ये कहा कि साहब डॉटेड लाइन को हम मुकम्मल ना करें बल्कि अपने तौर पर लाइन खींच लें, बहुत अच्छी बात है, इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर फुट रूल रखे बगैर आप लाइन लगाएंगे तो टेढ़ी लगेगी, कभी सीधी लाइन नहीं लगेगी और बदनुमा भी होगी। तो फुट रूल उसके साथ रख के उसके लाइन खींचेंगे, सीधी और खूबसूरत होगी। तो फुट रूल जो है उसको हम मानेंगे, क्योंकि गाइड कर रहा है फुट रूल आपकी पेंसिल और पेन को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को, तो लाइन सीधी लगेगी। तो वो मैं ये तरगीब दे रहा था कि लाइन खुद लगाइए लेकिन फुट रूल साथ रख लीजिए ताकि लाइन टेढ़ी ना होने पाए आपकी, ये बात है। तो इसी तरह जो फ्रस्ट्रेशन की बात आपने की थी वो मैंने ओमिट नहीं किया, मैंने वाज़े जवाब दिया था कि जब तक इंसान को समझ ना आए तो बेहतर ये है कि वो दीनियात में पढ़ी हुई जो बातें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में उसकी कॉपी कर लें। आपका बेटा जो है, मेरा बेटा या किसी का भी बेटा, जब तक के वो खुद अपने तौर पर कार चलाने के काबिल नहीं होता, हम उसके साथ एक हेल्पर ज़रूर बिठाते हैं जो उसके एक्शंस को करेक्ट करता है। और उससे पहले वो बड़ी गहराई से ड्राइवर को या अपने वालिद को गाड़ी चलाते हुए देखता रहता है, और जब वो सीखने लगता है तो वालिद की कॉपी करता है जिस स्टाइल में वालिद गाड़ी चला रहे थे, और साथ फिर भी उसके एक हेल्पर बैठा होता है जो उसको करेक्ट करता रहता। इसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल किसी साहब ने बातें सुनी सुनाई बातें इसी तरह वो बढ़ती चली जाती हैं, अफसाने बन जाती हैं। ये जो किताबें औलिया इकराम के बारे में पढ़ते हैं वो इसी का नतीजा है। ऐसी कोई बात नहीं, किस्सा सिर्फ इतना था कि मैं जाना चाहता था हज़रत अबू अली कलंदर साहब की खिदमत में। तो एक शाम मैंने गाड़ी हायर की, एक चीज़ जो मैं अपने अंदर से गंदगी अपनी निकाल नहीं सका, अंदर का गंद मेरा वो नहीं निकल सका अभी तक, मैं हिंदू के खिलाफ बहुत प्रेजुडिस हूँ, ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे मैं तंग आया हुआ हूँ, नहीं होनी चाहिए ये, वो भी इंसान है अल्लाह का बंदा है, उसके खिलाफ इतना बड़ा तासुब, यकीनन न सिर्फ नापसंदीदा है बल्कि कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं रहा मेरा। तो मैं दुआ ये मांग रहा था कि ड्राइवर मुझे हिंदू ना मिले। तो मैं होटल मेरिडियन में ठहरा था, उससे पास ही एक प्राइवेट कार रेंटल वाले थे, उनके पास गया, उनसे मैंने पूछा, कहा जी ठीक है गाड़ी आपको भिजवा देते हैं। और मैंने उनसे कहा भी कि कोई सिख ड्राइवर हो तो भेज दीजिए, लेकिन वो जो गाड़ी आई उसका ड्राइवर हिंदू ही था। नतीजा हुआ कि वो मेरे जहन पे बहुत बड़ा बोझ बन गया, और मैं ऐसे ही अल्लाह के साथ गाड़ी में बैठे बैठे मैंने कहा, या अल्लाह अब ये सारा रास्ता पानीपत तक मैं इसी तरह जाऊंगा कि कुड़ता रहूंगा। क्योंकि हिंदू के बारे में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैंने ये महसूस किया, जहाज़ पे जाता हूँ मैं इंडिया, जो ही हम अपना बॉर्डर क्रॉस करेंगे मुझे जहाज़ के अंदर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो मुझे पता लगता है कि हम इंडिया में दाखिल हो गए। उस स्मेल से मैं बड़ा तंग होता हूँ, बड़ी अजीब स्मेल है वो। तो मुझे ये था कि या अल्लाह मैं पानीपत तक इसी स्मेल के साथ जाऊँगा। और वो इत्तेफाक ये हुआ कि थोड़ी दूर गया, वहाँ राउंड अबाउट था, गाड़ी घुमाई वापस आ गया। तो मैंने देखा सामने स्टैंड है दोबारा वही रेंटल वालों का, तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहने लगा जी मुझे बुखार है, मैं जा नहीं सकता। उसने जाके उसको मैनेजर को कहा, उसने कहा रोक दो गाड़ी, एक और कार मंगवाई। उसका ड्राइवर एक सिख था, तो उससे मैंने कहा कि चलो पानीपत चला गया, ले गया जाके। हाजिर दे के मैं वापस आया, थोड़े फासले पे गाड़ी बाजार मेन में बाजार में खड़ी थी, कोई 3-4 फुरलांग का फासला होगा। तो वो उसने वहीं से जब मैं आया तो वो एक दुकान से बाहर निकल रहा था, कुछ अपनी शराब खड़ी थी बोतलें थी उसके हाथ में, वो डिक्की में रख के बैठा। तो कहता जी आ गए आप? मैंने कहा जी। तो वापस चलूँ? मैंने कहा चलिए। जब गाड़ी उसने चलाई तो मुझे कहने लगा कि महाराज कुछ हमारे लिए भी दुआ कर दें आप। मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई गुनाहगार आदमी नज़र नहीं आया दुआ कराने के लिए, मुझे दुआ का कह रहे हो तुम? तो मुझे आराम से उसने कहा कि देखें महाराज बात यह है, हम ड्राइवर हैं, सुबह से रात तक तरह तरह के आदमी से मिलते हैं। जब आप गाड़ी में बैठे थे मेरे साथ, गाड़ी मैंने चलाई तो एक तो गाड़ी बड़ी लाइट थी, दूसरा उसने आते हुए, रोज़ आता हूँ मैं तुमने दो दो बार पानीपत, तो जितना पेट्रोल रोज़ खाती गाड़ी उससे आधा खाया है। तो उसने हिंदी का कोई वर्ड यूज़ किया अपने, कि मैं जब आप बैठे थे तो उस वक्त समझ गया था कि ऐसा आदमी मेरी गाड़ी में बैठा है, मैं हिंदी का लफ्ज़ तो याद नहीं सक मुझे। तो मैं तो इस इंतज़ार में था कि अपना काम करके वापस आएंगे तो मैं आपसे दुआ करा लूँगा। तो दुआ करने वो दुआ हो गई, उसने मुझसे पता लिया कि मैं आऊँगा वहाँ फिर दुआ कराने, पाकिस्तान आऊँगा। वो ये सारा किस्सा था, इतना सा जिसका अफसाना बना हुआ है, वो इतना लंबा चौड़ा, वो इतनी सी मामूली सी वो बात थी। अभी तो बहुत देर इस मौजू पे बात होती रही। बात ये है कि ये अब आप बहुत सों के दिल की बात कह रहे हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो उसने कुरान में भी कहा कि मुझसे अच्छे गुमान रखो, मैं अच्छा ही करूँगा। तो वो तो रब ने कहा, लेकिन वो फक्र फाका की बात ये है कि मैंने तो आपसे अर्ज किया कि रब ताला के नज़दीक इस दुनियावी माल और ज़र की अहमियत, वो मरी हुई बकरी के गले सड़े जिस्म के एक बाल के बराबर भी नहीं है। तो जिसको वो दोस्त रखता है उसको इतनी हकीर चीज़ वो क्यों देगा, उसको वो आला चीज़ देगा। और इसका एक सबूत मैं दे सकता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, आपकी दुनियावी ज़िंदगी देख लीजिए आप क्या नक्शा पेश करती है, जबकि आपने ख़ुद फरमाया कि अगर मैं चाहूँ तो कोहे ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए। तो ये अगर कोई अच्छी चीज़ होती अल्लाह के नज़दीक, ये पसंदीदा चीज़ होती, तो वो अपने महबूब को सबसे पहले उन हालात में रखता। तो ये इतनी हकीर चीज़ है, अब वो हमारी ज़िद है कि हम उसी हकीर चीज़ की तरफ दौड़ दौड़ के जाते हैं, उस बच्चे की तरह जो जलती हुई आग को देख के उसकी तरफ दौड़ दौड़ के जाता है कि मैं तो ये आग हाथ से पकड़ के ही दम लूंगा। तो बिल्कुल चला है, ये जो इस्लाम के शुरू के 30 साल हैं जब सहाबा कराम जिंदा थे तो क्या हुआ, बेहतरीन अरूज आया इस्लाम को या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़नी पड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छोड़ी दुनिया? ये किसने कहा, किसी सहाबी ने छोड़ी? ये गलत है बिल्कुल। दुनिया कतन नहीं छोड़ी है। आप सबसे पसंदीदा चीज ये है कि एक हाथ में दुनिया दूसरे में दीन लेके चलिए और दोनों हाथ एक दूसरे से नीचे ना होने पाए, उसको बराबर लेकर चलिए। पसंदीदा चीज ये है।